તારીખ 29/7/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 176 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 681
વાઘભાઈ ઉપર 10મો પુત્ર છે. એક મહિનામાં એક બે મહિનાના પરિચયમાં જીવન મુક્ત સૌભાગ્ય મૂર્તિ સૌભાગ્યભાઈ મોરબી સૌભાગ્યભાઈ કપાસના વેપાર છે. ક્યારેક મોરબી પણ રહેતા હતા, સાયલામાં પણ વેપાર કરતા અને ક્યારેક મોરબીની બજારમાં પણ વેપાર કરતા હતા. વિશેષણ તો ઘણું સારું આવ્યું છે, જીવન મુક્ત સૌભાગ્ય મૂર્તિ. ભાવિ નૈગમ નૈથી વિશેષણ વાપર્યું છે કે આપનું સૌભાગ્ય એવું છે કે મુક્ત થઈ જશો. આમ તો જીવન મુક્ત દશા છે એ અરિહંત પરમાત્માની દશા છે. જીવન એટલે આયુષ્યનું જીવન, આયુષ્યનું જીવન, આયુષ્યનું બંધન હોવા છતાં પણ મુક્તપણે જેનું પરિણામ છે જીવન છે એને જીવન મુક્ત કહે છે. મુનિ દીપચંદજી સંબંધે આપનું લખવું યથાર્થ છે. સ્થાનક પાસેના કોઈ મુનિ હશે, એમના યોગ્યતા વિશે કાંઈ આપસમાં લખાણમાં ચર્ચા થઈ હશે, પત્રમાં તો લખ્યું છે કે યથાર્થ છે તમે લખો છો. ભવસ્થિતિ પરિપક્વતા, ભવસ્થિતિની પરિપક્વતા થયા વિના, દીનબંધુની કૃપા વિના અને સંતના ચરણ સેવા વિના ત્રણેય કાળમાં માર્ગ મળવો દુર્લભ છે. ક્યા કહેતે હૈ કે એક તો જિસકી ભવિતવ્યતા પક ગઈ હો અને જિસકો અભી લંબા ભાવ કી સ્થિતિ હોને વાલી નહીં હો, એસા એસી જિસકી ભાવ કે વિષય મેં યોગ્યતા આ ગઈ હો, દીન બંધુ કી કૃપા વિના, અન્ય મત મેં ઉસકો ઈશ્વરી કૃપા કહેતે હૈ, લેકિન યોગ્યતા એક એસી ચીજ હૈ જો સ્વયં કામ કરને લગતી હૈ. ઉપાદાન કી યોગ્યતા કો યહાં દીન બંધુ કી કૃપા કહી હૈ, વો સ્વયં કાર્ય કરને લગતી હૈ, કહેના નહીં પડતા ઉસકો, उसको खुद ही अंतर से आत्म कल्याण की भावना रहा करती है. जब कोई ज्ञानी पुरुष के चरण में वो आ जाता है तभी उसको मार्ग मिल जाता है. जब मोक्ष मार्ग मिलता है तब तीनों बात होती है. एक मोक्ष मार्ग जब मिलता है किसी को तो उसको तीनों बात होती है, उसको भाव स्थिति भी परिपक्व हो गई है, उसकी योग्यता भी उपादान की भी अच्छी हुई है और निमित्त में वो संत के चरण में आ जाता है, ज्ञानी के चरण में वो आ जाता है, उसकी आज्ञाकारिता में आ जाता है, उसकी परम भक्ति में आ जाता है. चरण सेवन का मतलब है अत्यंत भक्ति और आज्ञाकारिता, ये दोनों एक साथ रहता है तभी ना भावी है. उसको मोक्ष मार्ग अवश्य मिलता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो मोक्ष मार्ग मिलना दुर्लभ है, मोक्ष मार्ग आसान नहीं है.
क्या कुछ भक्ति और आज्ञा में क्या फर्क है?
भक्ति भक्ति है और भक्ति के साथ आज्ञाकारिता आई जाती है, क्योंकि सर्वार्थ सर्वार्पण बुद्धि से समर्पण होता है ना, तो आज्ञाकारिता में वो जीव आई जाता है। तो एक साथ दो पहलू होता है, ऐसी योग्यता में एक साथ दोनों पहलू होता है, अत्यंत भक्ति भी होती है और आज्ञाकारिता भी होती है। ठीक है, पर्याय तो एक है, इसके गुण अनेक है। पर्याय तो एक है, इसके गुण उसके पहलू अनेक होते हैं। जीव ने संसार परिभ्रमण ना जे जे कारणों छे तेमा मुख्य पोते जे ज्ञान माटे शंकित छे ते ज्ञाननो उपदेश करवो, प्रगट माते मार्गनी रक्षा करवी, हृदयमा ते माटे चळविचळपणु छता पोताना श्रद्धाळुने ए मार्ग यथा योग्य छे एम उपदेशवो, ते सर्वथी मोटुं कारण छे। क्या कहते हैं कि जीव को परिभ्रमण होने के बहुत से कारण हैं। दर्शन मुख के कारण जितने भी परिणाम होते हैं विरुद्ध अभिप्राय के, वो सभी परिभ्रमण के कारण हैं। उस सभी कारणों में एक मुख्य कारण की यहाँ चर्चा किया है, वो प्रसंग वसात ये चर्चा निकल गई है। मुनि दीपचंद जी के विषय में कुछ चर्चा चली है, तो जो संप्रदाय के मुनि होते हैं वो तो गुरु बन के बैठ जाते हैं और दूसरे को उपदेश देते हैं, तो ये एक परिभ्रमण का बहुत कारण में से एक मुख्य कारण है, ऐसा करके लिया। बात तो चली है किसी व्यक्ति विशेष के बहाने से, किसी व्यक्ति के निमित्त से भले ही बात चली हो, जो भी उपदेश देने वाले हो उनको ये सबको लागू होता है, चाहे विद्वान हो, चाहे पंडित हो, चाहे कुछ भी हो। दूसरों को जो उपदेश देता है उनको सबको लागू पड़ता है, क्योंकि उस वक्त वो गुरु हो गया, वो आचार्य पद को बैठ गया, तो उनको ये लागू होती है। कि संसार परिभ्रमण के कारणों में ये एक मुख्य कारण है कि जिस ज्ञान के लिए वो शंकित है माने निशंक नहीं हुआ, अनुभव के बिना निशंकता आती नहीं कभी भी। कोई वांछन से, पढ़ाई से, धारणा से निशंकता नहीं आ सकती, क्योंकि अनुभव तो उसमें रह गया। जिस ज्ञान के लिए खुद शंकित है, जिस भीतर में शंका रही है, वही ज्ञान का उपदेश करता है धारणा ज्ञान से, और प्रगट में उसकी रक्षा करता है कि हम जो कहते हैं वो बराबर है, हम कहते हैं वो बराबर है। हृदय में मैंने भीतर में उसके लिए चल विचलित पना है, जहाँ शंका है, निशंकता नहीं है, वहां विचलित पना तो होता ही है, होगा ही है, होगा ही। ऐसा होने पर भी अपने श्रद्धालु जो अपने मानने वाले हैं, वो तो पक्षा पक्ष में अपने मानने वाले होते हैं, ऐसा जो अपने मानने वाले हैं उसको ऐसा उपदेश देना कि हम जो कहते हैं वही यथार्थ है, हम कहते हैं वही यथार्थ है, ये परिभ्रमण का सबसे बड़ा कारण है। क्या परिभ्रमण के कारण तो बहुत है, लेकिन ये परिभ्रमण से सबसे बड़ा कारण है, ऐसा लिया है। इसलिए गुरु पद में बैठना, दूसरे को उपदेश देना में बहुत जोखिम है। हाँ, पाप नहीं कोई उत्सूत्र सरीखो, उत्सूत्र भाषण जिसो, तो क्या है कि वो संप्रदाय में जो साधु लोग होते हैं सूत्र का उत्सूत्र कर देते हैं, खुद को तो पता नहीं है, तो ऐसे तो वो बाहर में तो यम नियम संयम पालते हैं, लेकिन उत्सूत्र जैसा कोई बड़ा पाप है ही नहीं। सिद्धांत विरुद्धता अन्यथा सिद्धांत हो जाता है, इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। जिज्ञासा के लिए बात करना, भावना बढ़ाने की बात करना, जिज्ञासा के बाद उपदेश में तो मैं जानता हूँ वो बात आए बिना रहेगी नहीं। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम लोगों को बताता हूँ। और उसमें भी एक बात वो है छिपी हुई है कि हम परिवार वाले को क्यों उपदेश देते हैं, क्या हम इस बहाने हमारा अपनत्व दृढ़ नहीं करते हैं क्या, कि मेरे परिवार वाले हैं इसलिए वो सन्मार्ग में आए तो अच्छा है, उनको वो बात समझ में आए तो अच्छा है, मेरे हैं इसलिए ना। तो ये सही बात करने के बहाने परिवार में अपनत्व क्या हम नहीं कर सकते, नहीं करते हैं? इसका क्या, हम पड़ोस के लिए ऐसा करते हैं प्रयास क्या, दूसरे के लिए करते हैं, वो प्रवृत्ति करते हैं क्या कि नहीं करते हैं? ये तो मेरे परिवार वाले हैं, अगर वो समझे तो अच्छी बात है, मेरा पना आया वो ध्यान में नहीं रहेगा। दूसरा कि हम उपदेश देने लायक है ही नहीं, हमको तो उपदेश लेना है, देना कहाँ है, उपदेश लेना है तो पहले तो हम वो काम करें, प्रथम ले ही उपदेश, तो पहले तो उपदेश लेने की बात है, अपना काम पूरा बाकी है उपदेश देने की भी। हाँ नहीं दे उपदेश को, उपदेश देने में तो कहाँ कितना नुकसान हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। जिसको अपना पूरा काम बाकी है ऐसा भान नहीं रहता है तब तो उपदेश देने लगता है, तो चाहे परिवार के बहाने कर दो, हम बड़े हैं वो छोटे हैं, ऐसा है वैसा है, ये सब आ जाएगा। हम बड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसका मतलब कि परिवार में सब जीव स्वतंत्र है वो बात तो रही नहीं, हमारी नजर तो अपना परिवार वाली तो पहली हो गई, बाद में उपदेश की बात हो गई, वो भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये सबसे परिभ्रमण का बड़ा कारण है आमज आपते मुनिना संबंध में विचार स्वतो लागी सकशे, उसी कारण से बात चली है कि दीपचंद जी के मुनि में आप विचार करेंगे तो ये बात आपको मेरी बात सही लगेगी, कि देखो ये इसका परिभ्रमण का कारण सब बड़ा चल रहा है, उसको दूसरों को उपदेश देता है, खुद का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। पोते शंका में गड़का खाते हो एवो जीव निशंक मार्ग बोधवानो दंभ राखे आखू जीवन गाळे ए तेने माटे परम शोचनीय छे। क्या कहते हैं कि खुद तो शंका में डुबकी खाता है, कभी बाहर निकलता है कभी अंदर जाता है, गड़का खावाना अर्थ हो गड़का, मैंने कहा है कि जो डूबता है वो डूबने वाला कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है पानी में कभी बाहर आता है, इसको बोलते हैं गड़का खाए से। अब हिंदी में भी कुछ होगा, गोता गोते खाना, ठीक है। पोते शंका में स्वयं तो गोते खाते हो, ऐसा जीव निशंक मार्ग का उपदेश देने का दंभ मैंने आडंबर रखता है, निशंकता से जैसे बोलता है, जैसे स्पीच देता है, और उसी तरह पूरा जीवन वो साधु बन गया तो ऐसा जीवन पूरा निकालेगा, वो इसके लिए परम सोचनीय है। सोचनीय मतलब विचारणीय है, दुख के साथ विचार करना वो सोचनीय है, एक दुखदायक बात है, करुणा होवे ऐसी बात है। मुनिना संबंध में आ स्थले कई कठोर भाषा में लिख्यू छे एम लागे तो पण तेवो हेतु नथी ज। कभी हमारे शब्द कठोर लग जाए लेकिन हम करुणा से लिख रहे हैं, द्वेष बुद्धि से ये कठोर भाषा नहीं निकली है, ऐसा कहने का मतलब है। निष्कारण करुणा, ज्ञानी की निष्कारण करुणा से जो तीर्थंकर द्रव्य होता है उसको तीर्थंकर प्रकृति का अनुबंध होता है, और इसके फल स्वरूप जब ये तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है तो वाणी खिलती है, दिव्य ध्वनि खिलती है। वो तो निष्काम भाव से जो रागांश चला करुणा का, इसका फल आया उधर। और ऐसे फल से भी अनेक 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 जीवों का बेड़ा पार होता है। ऐसी बात है, एक न्याय से निष्कामता है वो वितरागता के साथ मेल खाने वाली बात है, क्योंकि तो वितरागता में राग नहीं, ऐसे निष्कामता के में फल का राग, राग राग है लेकिन राग का फल का राग नहीं, और राग का राग नहीं है, दोनों बात है, राग का राग भी नहीं है और राग के फल जो आता है उसका भी राग नहीं है, उसको कहते हैं निष्कामता। इसलिए जहां भी निष्कामता हो वहां मलिनता मुमुक्षुता में भी कट जाती है, निर्मलता आने लगती है। जैसे कोई निष्काम भक्ति होती है तो निर्मलता आने लगती है। ते वो हेतु नथी नथी ज, जेम छे तेम करुणार्द्र चित्ते लिख्यू छे, करुणा थी आर्त चित्त होने से दिखा है कि अरे इस जीव को परिभ्रमण का कारण हो रहा है, बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत दुखी हो जाएगा। एमज बीजा अनंता जीव पूर्व काले रखड़ा छे, वर्तमान काले रखड़े छे अने भविष्य काले रखड़शे। आवी रीते बीजा ने उपदेश देवामां ભૂતકાળમાં પોતે પણ રખડ્યો છે, અનંતા જીવો રખડ્યા છે, વર્તમાને રખડે છે, ભવિષ્યમાં પણ રખડશે, વો સિદ્ધાંતિક બાત હો ગઈ કે જિસ વિષય મેં હમારા અનુભવ નહીં હો ઉસ વિષય કા ઉપદેશ નહીં દેના। ઇસલિયે જો મુમુક્ષુ હૈ વો ભી જો સત્સંગ લેતે હૈં વો ભી અપને અનુભવ કી ચર્ચા કરેંગે, दूसरी चर्चा नहीं करेंगे, आगे की बात है बोल देंगे, हमारे अनुभव में नहीं है। समझ में आती है, सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, समझी हुई है, लेकिन हमारे अनुभव की नहीं, अनुभव की बात बताएंगे और ऐसा यथार्थ सत्संग तो ऐसा ही चलता है। जे जीव छूटवा माटे जीवे छे ते बंधन मां आवतो नथी, आ वाक्य निशंक अनुभव नो छे। खुद जो बात करते हैं वो भी अनुभव से करते हैं, बिना अनुभव नहीं करते। जो जीव छूटने के लिए जीता है वो बंधन में नहीं आता। क्यों? कि हर उदय प्रसंग में वो छूटने का प्रयास करेगा, हर उदय प्रसंग में वो छूटने का प्रयास करेगा। तो जीता है, जीवन तो जीता है, लेकिन छूटने के लिए जीता है। जो भी उदय आएगा मेरा ये छूटने का प्रयोग हो जाएगा, जो भी उदय आएगा मेरा छूटने का प्रयोग बनेगा, वो बंधन में नहीं आएगा, नहीं आता है। यह बात निशंक अनुभव की लिखी है, हमारा अनुभव से वो बात हम लिख रहे हैं। फिर से लिखते हैं, बंधन नो त्याग करे छुटाय छे एम समझवा छता तेज बंधन ने वृद्धि कर्या करवी, तेमा पोतानु महत्व स्थापन करवू, पूज्यता प्रतिपादन करवी, ए जीव ने बहु रखड़ावनारो छे। आवी समझण समीपे आवेला जीव ने होय छे। केवी सरस बात लखे छे, સમીપે માર્ગની સમીપે, જે મુક્ત મુક્તિના માર્ગની સમીપે જે જીવ આવ્યો હોય છે એને એવી સમજણ હોય છે। એટલે કે જે મુક્તિના માર્ગ સમીપે નથી હોતો એને આવી સમજણ નથી હોતી। કેમકે મુનિનો પ્રસંગ ચાલે છે ને કે બંધનનો ત્યાગ કર્યો, એટલે એને શું કર્યું કે કુટુંબના બંધનનો ત્યાગ કર્યો। હવે એની સ્ત્રી એમ ન કે તમે ઘરે વહેલા આવજો, એનો દીકરો એમ ન કે તમે પિતાશ્રી તરીકે એની ફરજ બજાવો, બંધન મુક્ત છે ને, દીક્ષા લીધી એટલે કુટુંબિક કાર્યોના અને સામાજિક કાર્યોના બંધનથી મુક્ત થઈ ગયા। તો બંધન નો ત્યાગ કરે છૂટાય છે, એ વાત જરૂર છે કે બંધન નો ત્યાગ કરે છૂટાય છે, એમ સમજ્યા છતાં તે જ બંધનની વૃદ્ધિ કર્યા કરવી। એક કુટુંબ છોડ્યું ને, સેંકડો કુટુંબ સાથે સંબંધ બાંધ્યો, આ ગામમાં અમારા આટલા, આ ગામમાં અમારા વાળા આટલા, આ ગામમાં અમારા વાળા આટલા, હે? આજકાલ સાધુઓમાં શું હશે, કેટલાક લોકો કોઈને માને, કેટલાક લોકો કોઈને માને, સતામપુરમાં તો બહુ જ છે, અમે ફલાણાના સંગાડા ને, અમે ફલાણાના સંગાડા ને, અમે ફલાણાના સંગાડા ને, થઈ રહ્યું અને સાધુ ને એટલા કુટુંબ બીજા એમ છોડ્યું, સેંકડો થઈ ગયા। બંધન નો ત્યાગ કરે છૂટાય છે એમ સમજ્યા છતાં તે જ બંધન ની વૃદ્ધિ કર્યા કરવી, તેમાં પોતાનું મહત્વ સ્થાપન કરવું। अपना बड़प्पन की स्थापना करना, हम ऐसे हैं, हम आचार्य हैं, मुनि हैं, हम ऐसे हैं, हम त्यागी हैं। पूज्यता प्रतिपादन करवी, अपने प्रति दूसरे लोगों की, वो तो गुरु के स्थान में बैठते हैं ना, पूज्यता का प्रतिपादन करना, ये जीव ने बहुत रखड़ावनारू है, बहुत परिभ्रमण कराने का कारण है। ज्ञानी की नजर में देखो संप्रदाय के गुरु कैसे हैं, कहो बेचारे बहुत परिभ्रमण करेंगे, बहुत परिभ्रमण करेंगे, बहुत गड़बड़ बढ़ गई तब ये हुआ है, ऐसा दिखता है। देखो ऐसी समझ मोक्ष मार्ग के समीप आने वाले जीव को होती है। जो मोक्ष मार्ग से दूर है उनको समझ नहीं है, इसलिए वो ऐसी प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा कहते हैं। अस्ति में नास्ति समझ लेना है, बात ढंग से करते हैं। ऐसी समझ मोक्ष मार्ग की समीप आने वाले जीव को होती है। इसका मतलब कि ऐसे लोगों को मोक्ष मार्ग की समीपता भी नहीं है, ऐसी बात होगी। तेवा जीवो समर्थ चक्रवर्ती जेवी पदवी है छता तेनो त्याग करी, करपात्र मा भिक्षा मागी ने जीवनार संतना चरण ने अनंत अनंत प्रेमे पूजे छे, अने जरूर ते छूटे छे। शू कहे छे, जेने जिसको यथार्थ समझ होती है वो तो समर्थ चक्रवर्ती, मैंने बहुत पुण्य की पदवी, सर्वोच्च पुण्य की पदवी चक्रवर्ती की मनुष्य में होती है, उसका भी त्याग करके, मैंने उसका अभिमान छोड़ करके, करपात्र में भिक्षा मांगने वाले, जीवन जीने वाले संत चरण को, संत के चरण को अनंत अनंत प्रेम से पूजते हैं। वो तो करपात्र में भिक्षा की बात हमने 24वां वर्ष करी छे। कर्कपात्र में भिक्षा दिगंबर जैन सिवाय कोई जगह नहीं है। और तो सब सितंबर में तो पात्र रखते हैं भिक्षा के, और दूसरे संप्रदाय में नग्न साधु होते हैं फिर भी वो तुमड़ी रखते हैं। खाने में क्या रखते हैं, जंगल में एक वनस्पति होती है, इसकी छाल कठिन हो जाती है, जैसे नारियल की छाल होती है वैसे बड़ी तुमड़ी जैसी होती है, उसमें सब डाल देते हैं, रोटी दाल भात चावल सब सब इकट्ठा करके फिर खा जाते हैं। करपात्र में दिगंबर जैन सिवा कोई नहीं। करपात्र में भिक्षा मांग करके जीने वाले संत के चरण कैसे संत लिया है, दिगंबर मुनि लिया है, भावलिंगी संत, कि जिसको यथार्थ समझ आती है वो तो भावलिंगी संत के श्री गुरु के चरण में चले जाते हैं, उसके चरण को अनंत अनंत प्रेम से पूजते हैं। इसको ऐसा होना है, इसका मतलब ये है कि उसको ऐसा होना है, आप जैसे हुए ऐसा हमको होना है। भावलिंगी दिगंबर संत मैंने चलते फिरते सिद्ध देखते हैं, वो क्या देखते हैं, ये साक्षात प्रकट मोक्ष तत्व है। वैसे तो मोक्ष मार्ग में है लेकिन उनको आचार्यों ने मोक्ष तत्व बोला है, प्रवचन सार में आखिरी गाथा है मोक्ष तत्व, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध नहीं होता, इसलिए ऐसे संत के चरण को अनंत प्रेम से पूजते नहीं, अनंत अनंत प्रेम से पूजते हैं। कितना भाव आया है, ये खुद को भाव आया है, अपनी भावना है ना ऐसा बनने की, तो ऐसे ऐसा भाव आएगा, अनंत अनंत प्रेम से उसकी पूजा करते हैं और जरूर वो छूट जाता है, उसका तो बेड़ा पार हो गया, वो छूट जाता है। दीन बंधु ने दृष्टि एवी छे के छूटवाना कामी ने बांधवो नहीं, बांधवाना कामी ने छोड़वो नहीं, लाक्षणिक पद्धति छे, गुड भाषा है। दीन बंधु मैंने कुदरत, कुदरत की कोई ऐसी परिस्थिति है कि जे छूटवानो कामी छे ने बांधती नथी, जेने अंतर थी छूटी जवुं छे ने कोई बांधी सके नहीं, એને કુદરત પણ બાંધતી નથી, એની ભાવના છે ને છૂટવાની, છૂટવાની ભાવના એને કુદરત નથી બાંધતી એમ, અને બંધાવાના કામ એને છોડવો, એને જેને બંધાવવું છે એને કુદરતે છોડતી નથી, એને બાંધે બંધન આવે એવા જ ઉદય આવે એને પાછા. વાત તો પોતા ઉપર ઉતારવાની છે, સ્વલક્ષ્ય વિચારવાની વાત છે કે હું જો છૂટવાનો કામી હો તો ભગવાનની એવી દીન બંધુ એટલે દીન ઉપર કૃપા કરનારા ભગવાનની એવી કૃપા છે કે એને મને બાંધે જ નહીં. બંધાવાનો કામી અંદરથી હોય એને ભગવાન છોડે નહીં, એને બાંધે એમ કે છે. ઠીક, એમની ભાષામાં લખે છે, સુભાગભાઈ ની ભાષામાં લખે છે. બાકી તો જેને અંતરથી છૂટવું છે એ છૂટવાના રસ્તે જાય છે દરેક પરિસ્થિતિમાં, અને જે બંધાવાનો કામી છે એ ત્યાગી થઈને પણ બંધાય છે. ઓલો ભોગી થઈને છૂટે છે અને આ ત્યાગી થઈને બંધાય છે એમ કેવું છે. બોલો, પૂર્વ કર્મથી ભોગો ભોગમાં હોય એ છૂટે છે, આ ત્યાગી થઈને બંધાય છે. કેમ કે એને ભોગો ભોગ સાંભળે છે. એટલે એવી જ કોઈ દિન બંધુની દ્રષ્ટિ એટલે એવી જ કોઈ કુદરતી વ્યવસ્થા છે. અહીં વિકલ્પી જીવને એવો વિકલ્પ ઉઠે, કોને ઉઠે? તર્ક વિતર્ક ઉઠતા હોય એવા જીવને એને વિકલ્પી જીવ કીધો. બહુ વિકલ્પ કર્યા કરે એમ તો આમ તો અપ્રયોજનભૂત. કોઈ જીવને બંધાવવું તો ગમતું નથી, એને સર્વને છૂટવાની ઈચ્છા છે તો પછી બંધાય છે કા કરવા બંધાય? બધાને છૂટવું જ છે પછી શું કરવા બંધાય? એ વિકલ્પની નિવૃત્તિ એટલી જ, એટલે એની સમાધાન એટલું જ કે એવો અનુભવ થયો છે કે જેને છૂટવાની દ્રઢ ઈચ્છા થાય છે તેને બંધનનો વિકલ્પ મટે છે, અને એ આ વાર્તાનો સત્સાક્ષી છે. પોતે જ પોતાની સાક્ષી આપી દીધી. શું કહે છે કે એ વિકલ્પની એવા પ્રશ્નનું સમાધાન એવું છે કે હમકો એસા અનુભવ હુઆ હૈ કે જિસકો છૂટને કા દ્રઢ ઈચ્છા હોતી હૈ ઉસકો બંધન કી શંકા નહીં હોતી, ઉસકો બંધન કા વિકલ્પ મિલ જાતા હૈ. મેં કઈ બનતા તો નહીં ને, મેં કઈ બંધતા તો નહીં ને, એસા હોને સે બંધન તો નહીં હોગા ને, ઉસકો છૂટ જાતા હૈ. और इस बात करने वाले का हम खुद ही साक्षी हैं, हम खुद ही इसका प्रमाण है, ऐसा कहते हैं. सबूत है कि जिसको वो छूटने की दृढ़ इच्छा होती है वो किसी परिस्थिति में बंधन में नहीं आता. और भी दो पैराग्राफ है यहाँ तक.